और आपने उस हकीम का वाक्या भी सुना होगा, अल्लाह के नबी के पास भेज दिया। अबू तालिब के पास गए बड़े बड़े सरदार मिलकर, कहने लगे तेरे भतीजे पे कोई आसेब का असर हो गया। लोगों को ये भी लगता है, दीवाने हो गए, जिन चिमट गए इनको, इसका इलाज कराओ, कोई भूत प्री चिमट गया इसको, इसका कोई रूहानी इलाज कराओ। अच्छा कोई है? कहने लगे है, वो एक हकीम साहब हैं, वो रुखिया करते थे, उनको अल्लाह के नबी के पास भेज दिया। अब वो हकीम साहब अकेले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं, सब चले गए। कहने लगे अब बरखुरदार सुनाओ भाई, क्या कहते हो? मैंने सुना है तुम कहते हो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे पे वही आती है, तो सुनाओ मुझे क्या कहते हो। अल्लाह के नबी का, अच्छा मेरी बात सुननी है? तो नहमदुहू व नस्तईनुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। वो इब्तदाई खुतबे के अल्फाज जो अमूमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, आपने वो एक दफ़ा पढ़े। इब्ने दगना उसका नाम था, उसको बहुत मज़ा आया। कहने लगा एक बार फिर सुना दो, दूसरी दफ़ा भी सुन लिए वही खूबसूरत अल्लाह के हमदिया कलमात। तीसरी बार के बाद थोड़ी देर गुजरी, लोगों ने दरवाज़ा खोला, सुनाओ भाई इसका इलाज हो गया। कहने लगा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलल्लाह। क्या मतलब तुम इसका कलमा पढ़ रहे हो जिसके खिलाफ हमने तुम्हें पैसे दे के बुलाया? कहने लगा इलाज इसका नहीं तुम्हारा होना है। तो याद रखिएगा दिल दिल, यहाँ जहाँ बैठे एक सेकंड में आप दिल बदलिए। एक ही औरत होती है, बेटी कहती है इससे अच्छी औरत कोई नहीं दुनिया में, आई लव माई मॉम। उसी औरत के बारे में एक बहू बैठी भी कहती है इससे ज़्यादा सख्त औरत ही कोई नहीं है। क्या फ़र्क है? औरत तो एक ही है, वो बेटी की नज़र से उसको देखती है, वो बहू की नज़र से उसको देखती है। तो जब दिल बदल जाते हैं तो दुनिया बदल जाती है। अब क्या हुआ, अल्लाह का कलाम फैलता गया फैलता गया, हक को कभी को रोक नहीं सका, याद रखिए। इसलिए हर दौर के नबी की कहानी बार बार कुरान में आती है कि या तो हक के सफ़ीर बन जाओ, या इस राही रास्ते का सपोर्टर बन जाओ, या रास्ता छोड़ दो, क्योंकि जिन्होंने मुखालफत किया अब ये उनकी बात है। वक़ालु क़ुलूबुना गुल्फ, बड़े थे मदीना में जब नबी सल्लम आए हजरत करके, तो यहूद वहाँ पहले से दीन के नाम पे मशहूर थे, दीनदार। देखिए किसी भी सोसाइटी में ना अमूमन दो तरह के लोग होते हैं, हर लिहाज से भी देखें तो क्लासिफिकेशन और डिवीज़न तो होती है ना। लेकिन हम अगर इस वक्त सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, यानी इल्म और जहालत की बुनियाद पे, एक होते हैं आमतुन्नास, मेरे आप जैसे लोग बेचारे सीधे साधे, जिन्होंने शुरू से नमाज रोज़ा हज ज़कात माँ बाप से बचपन से दीन की बातें सुनी, दीन दीन दीन। हमारा कोई रिश्ता होना हो या निकाह कराना हो तो मौलवी साहब को ढूंढते हैं, आइए ज़रा बेटी का निकाह करा दें। अल्लाह ना करे हमारे घरों में कोई फौत हो जाए तो हम ढूंढते हैं शहर में कौन है जी, आए गुसल दे, गुसल वाली बाजी कौन है। आप में भी होंगी कोई दो चार इस शहर में भी, हाँ अच्छा जी, और जनाजा कोई पढ़ा दे। यानी ये एक तबका वो होता है कि जिनको जब भी किसी दीनी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है तो ये कुछ मखसूस लोगों को ढूंढते हैं, ये होते हैं आमतुन्नास। मैं इसमें आप सबको और अपने आप को डाल देती हूँ मिसाल, लेकिन अगर आप में कोई इससे ऊपर है तो माजरत के साथ। एक दूसरा तबका होता है और वो कौन है, जो पहले से मशहूर होते हैं, शोहरत उनकी क्या होती है, वो दीनदार लोग हैं। बात समझ गए, वो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो किसी ना किसी जगह, जैसे मिसाल है वो हजरात जिनको लोग निकाह पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, जिनको जनाजे के लिए बुला रहे हैं, मस्जिद कायम कराम इमाम हैं, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं अल्लाह के हुक्म से, ख़तीब हैं या मुफ्ती हजरात हैं, किसी भी शहर में हमेशा होते हैं। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भरे होंगे इस चीज़ से, हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं वहाँ भी माशाल्लाह हर शहर में कुछ नाम मशहूर होते हैं, ऐसे ही है ना। अब वो जो हजरात होते हैं जो मारूफ होते हैं दीन के नाम पर, लोगों की उनसे उम्मीदें बहुत अच्छी होती हैं कि नहीं होती। अब आप वापस आइए, क्योंकि मेरी आदत है सीरत पे बात करने की। मक्का के 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जितने लोग थे वो मेरे आप जैसे आम लोग थे, क्योंकि अल्लाह के नबी और हज़रत शुएब के बीच में कोई नबी अरब की ज़मीन पे नहीं आया, हालांकि हज़रत ईसा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में वैसे ही कोई नबी नहीं आया। ये आप सबको हकायक आते होंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे बनी इसराइल के, ये तो सबको तारीख आती है। अरब ज़मीन पे कोई नबी नहीं आया। सूरह यासीन की पहली आयतों को जाकर खोल, अल्लाह कहता है इनके पास कोई आया ही नहीं। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नकल मिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम, क्या अल्लाह ताला उसमें कहता है कि इनके पास नबी आया, मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम फी गफलत, यानी गफलत में थे। अब मक्का के सब लोग मीडियोकर्स थे, आम लोग, अच्छा, अब मजहबी ज़रूरतें हर ग्रोह की होती हैं, ये तो एक फितरी सी बात है। मक्का वाले किससे राबता करते थे जब उनको कोई ज़रूरत पड़ती? तो मदीना में यहूद थे। मदीना के अंदर यहूद एक पुराना गिरोह था जो हिस्ट्री में नहीं जाने चाहूँगी, सिर्फ आपको इतना सा बता दूँ कि नबी सल्लम जब मक्का से मदीना में आए तो वहाँ दो गिरोह थे, एक तो आम लोग थे ना, लेकिन एक दीनदार लोग भी थे जो पहले से नबी सल्लम की आमद की खबरें दिया करते थे। अल्लाह के नबी गए, आपको उम्मीद क्या थी बताइए, कि माशाल्लाह ये तो पहले से वही काम कर रहे हैं जो के अल्लाह ने मुझे दिए, क्योंकि जो मूसा का पैगाम था वही मोहम्मद सल्लम का पैगाम था। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ़ एक गलतफहमी हुई थी उनको कि ये बनी इसराइल के साथ बनी इस्माइल का ठप्पा क्यों लगने लगा है, फ़िरका दूसरा क्यों है इनका आपकी ज़ुबान। बहरहाल इसको इतना करके चलिए, उन्होंने नहीं सुना, बाकी सब ने सुन लिया। अल्लाह के नबी के साथ 13 साल में सहाबा का एक ऐसा गिरोह तैयार हो गया जो तन मन धन देने को तैयार थे, जो कल नहनु अंसारुल्लाह का दावा करने वाले बने। मदीना में आप आ गए, औस और खजरज 200 साल से लड़ने झगड़ने वाली कौम अल्लाह के नबी का साथ देने लग गई। नहीं साथ दिया आपका तो उस दौर के बनी इसराइल के वो चंद उलमा ने नहीं दिया जो पहले से दीनदार मशहूर थे, उनकी बात है। वक़ालु क़ुलूबुना गुल्फ, मुंह पे कहते थे तेरी बात का हमें कोई नहीं असर होता। वैक्स्ड हार्ट, अभी मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी आपको, सबके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। कुछ लोग जो पहले से दीनदारी के ज़ोम में होते हैं ना, उनको किसी के दीन से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मोम लगा दें तो फिर उसको पानी में भी डाल कर रखिए तो चीज़ पानी नहीं लेती। इल्म का पानी लेने के लिए दिल को मुखबत होना पड़ता है, आजिज़ होना पड़ता है, अपनी बड़ाई के एहसास में। अब मैं कहूँ मेरे से बड़ाई कोई नहीं तो मैं किसी की क्यों सुनूँ? आप क्यों आए मुझे बताइए, अगर आपको यकीन होता कि आपको सब कुछ आता है तो आप कम अज़ कम इतनी गर्मी में तो ना बाहर से आते ना, तो क्या पता चला। क़ालू क़ुलूबुना गुल्फ। चलिए आगे देखिए, सूरत बकरा 93, व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिम उलेजल। यानी सिर्फ मैं आपको कुरान से दोस्ती करना सिखा रही, मुझे पता है आपको मज़ा कोई नहीं आ रहा, अगर मैं इसकी जगह उर्दू तर्जमा खोल दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन आयत 93 बकरा में एक दिल की और कैफियत है, दिलों में बछड़ों की मोहब्बत होती है। ये बनी इसराइल के आम लोग थे, आप मेरे जैसे, हर एक का एक बछड़ा होता है, हमारे भी आज हमारे तो बछड़े, क्या हमारी तो गाय भैंस से बकरी हैं, पूरे पूरे रेवड़ हैं। हर चीज़ जिसको सामने रख कर हम जीते हैं, जिसके लिए हमारी सुबह होती, जिसके लिए शाम होती, जिसके लिए हमारे घर बनते, जिसके लिए हमारा माल लगता है, वो हमारा बछड़ा होता है। हर एक अपना बछड़ा ढूंढे। उन्होंने तो एक फ़िज़िकल सेंस में बछड़ा बना दिया था ना, हमारे बछड़े, कई हमारे बच्चों के बछड़े उनकी तालीम है, हमारे मर्दों का बछड़ा उनकी जॉब है, जुमे पे नहीं आते, जॉब पे बैठे रहते हैं, कारोबार में बैठे हैं, 5 वक्त की मस्जिद की नमाज़ छोड़ दी, ये कारोबार उनका बछड़ा है। और माओ के बछड़े कौन है? ये छोटे छोटे बच्चे, गोद का बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ने देता, ये रोएगा फिर मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ। और हमारा बछड़ा खाना पकाना, मगरिब की नमाज़ है और नमाज के लिए उठो, हय्या अलस्सलात, वक्त भी थोड़ा है, और आपका बछड़ा चावल है, आप चावल पका रहे हैं। और कई लोगों ने कितना अच्छा हल ढूंढा, अजान से पहले पानी रखते हैं, फिर वज़ू करते हैं, फिर पानी में चावल डालते हैं, फिर जल्दी से 3 फर्ज पढ़ कर आके चावलों में एक चमचा लगा जाते हैं, दम देते हैं, उधर नमाज़ पढ़ी, उधर चावल पक गए, और पूरी नमाज में चावल चावल चावल, गल ना जाए, सड़ ना जाए, ये बछड़े होते हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझे चाहता है आपका मेरा दिल बिल्कुल खाली और साफ़ हो। जब तक आपका मेरा दिल साफ नहीं होगा, दिल से सब कुछ निकाल कर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ये नहीं होगा ना, अल्लाह आपको मुझे दीन नहीं देगा, वो फिर एक रस्मी दीनदारी होगी। तो आज मैंने आपने अपना बछड़ा ढूंढना है। आगे वो आयत आ गई है जिसका जिक्र उस वक्त से कर रही हूँ कि अल्लाह के नबी के दिल पे कुरान उतरा था। तो आयत 97 सूरह बकरा, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये कुरान हमने कहा होता है, फ़इन्नहु अनज़लहु अला क़ल्बिका, ए नबी आपके दिल पे कुरान को नाजिल किया गया। अब इतनी बातों के बाद आपको ये तो समझ आ गया कि कुरान में दिल का बहुत जिक्र है, 168 आयतें, सारी नहीं करती। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस चीज़ पे कि कुरान में दिल के लिए क्या लफ्ज़ है। बहुत आसान सी बात है, एक नाम है कल्ब सलीम, इल्ला मनतल्लाह बिकल्ब सलीम। तो दिलों की वो किस्में जिनका कुरान में जिक्र है, सबसे मशहूर जो आपका नाम था इसलिए वो लिख पहले शुरू में ले आए, कल्ब सलीम सूरह शोरा आयत 89 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे में अल्लाह ताला कहते हैं, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। आपके पास वक्त होता वो मैं 168 आयतें गो थ्रू करती, उसमें ये आ जानी थी, लेकिन इतना वक्त नहीं है हमारे पास। कल्ब सलीम कौन सा दिल है? ये वो खालिस दिल है जो कुफर, निफाक और गंदगी से पाक होता है। अपने ऊपर लीजिए, सबको भूल जाएं। ये आपकी मेरी बातें इस वक्त, आप और मैं हार्ट टेस्ट करवाने आए हैं। कहते हैं ना दिल का टेस्ट है, ईसीजी। आपकी मेरी ईसीजी हो रही है इस वक्त। खुद से पूछिए, क्या मेरा दिल कल्बे सलीम है? कैसे पता चले? तीन चीज़ें, अभी आगे भी कुछ आएंगी। नंबर एक, दिल में कुफर तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं है। हमें तो नींद में भी कोई कहेगा तो हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे दिल जमे हुए हैं। अल्लाह ना करे हमारे दिल में अल्लाह का इनकार बैठे, लेकिन अगली नस्लों की फ़िक्र की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न माहौल में पल रही हैं उनके दिलों में अब सवाल आ गया कि देर इज़ नो गॉड। तो मेरी आपसे उस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ वो इशू ही नहीं। बाहर होती तो सबसे ज़्यादा मैं इस पर बात करती, क्योंकि आज हमारे अपने मुसलमानों के बच्चे कह रहे देर इज़ नो गॉड, आई एम एथियस्ट। वल्लाही फैशन है, रिवाज है, आज के दौर का ट्रेंड है कि बच्चे महफिलों में खड़े होकर कहते हैं आई एम एथियस्ट। दहरिया उर्दू में हम कहते थे, बेदीन, बेखुदा। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि ना अल्लाह को मानो ना उसकी मानो, क्योंकि एक अल्लाह को माने तो फिर उसकी बड़ी माननी पड़ती है। जैसे माँ बाप को माँ बाप मानेंगे तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी, ठीक है? तो ये तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी चीज़ है निफाक। जितना को पता है निफाक के बारे में, अपने बारे में चेक कर लीजिए, मैं भी और आप भी, कि मेरे दिल में कहीं निफाक तो नहीं। और गंदगी क्या, ये आजकल हम पढ़ रहे हैं दीन और दुनिया में। आप में से कौन कौन आ रहा है दीन दुनिया में? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पांच पारों में दिल पांच चीज़ों से साफ़ होने शुरू हुए। आप में जो सिस्टर्स नहीं आती उनको बता दूं, अल्लाह की तौफीक और सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से आपका ये शहर इस लिहाज से खुशबख्त है कि ये तीसरा दौरा कुरान शुरू हो गया, तो एक साल और कुछ माह के अंदर। पिछले साल हमने 2018 में ग्रैंड कैसल में एक दौरे कुरान किया था, जिसका थीम क्या था बोलिए? यूथ स्पेशल, यानी एक दौरे कुरान हुआ। अभी इस साल खुशाप में दूसरा हुआ है, रमज़ान में। क्या नाम थीम था? रिश्ते जोड़िए। जुड़े हैं कोई रिश्ते? अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ने समर कोर्स के नाम पर, ये भी असल में दौरे को, जिनका रमज़ान का दौरे कुरान छूट गया उनके लिए इससे प्यारा मौका कोई नहीं। और इसमें हम पूरे 30 पारे, हर दिन का एक पारा करेंगे। 5 पारे हो चुके। पहले पारे में सिर्फ और सिर्फ हमने हसद को फोकस किया, दूसरे में सब्र को, तीसरे में मुझे भी पता लग जाएगा बोल लेना बुखल, चौथे से क्या निकला? गुस्सा। अब तो नहीं आ रहा इस वक्त मेरे ऊपर, गर्मी तो नहीं लग रही? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और 5वें पारे पे कल बात शुरू हुई है जो मंडे को चलेगी आगे, ख्याना। 5 दिन में हमने 5 चीज़ों से दिलों को पाक करने की कोशिश की है। 30 दिन में आपका दिल कैसा हो जाएगा? शीशे की तरह चमकता हुआ दिल हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों से अपने दिलों को पाक करना है इंशाल्लाह। फिर इसी तरफ देखिए, कल्बे सलीम की एक और अलामत देख लीजिए, हर किस्म की खैर के करीब और हर किस्म के शर से दूर। अपने आप पे लिए, मैं तो अपने टेस्ट के लिए देख रही हूँ, आप भी देखिए, क्या मेरा दिल हर किस्म की खैर के करीब है? क्या वाकई मुझे खैर अच्छी लगती है और हर किस्म के शर से दूर है? ख़राब, गंदी, बेहुदा, बेकार चीज़ों से मैं दूर हूँ? कल्बे सलीम में तमाम बुलंद अखलाकी इकदार ऐसे ही जमा हो जाती हैं जैसे गहरी ज़मीन पर पानी जमा हो जाता। सच्ची बताऊँ, सोने के पानी से ये जुमला लिख सकें तो लिख लें। अखलाकी इकदार क्या होती हैं? गुड मैनर्स, अच्छा अखलाक, इन नकल आला खुलूक नज़ीम। देखिए, हम सारी ज़िंदगी इबादात की बहसों में पड़े रहे आज तक, कितनी रखते हैं, कितने सजदे, किधर हाथ बांधे, किधर सजदा करें। आज उम्मत के जो कम अज़ कम 4 बड़े गिरोह आज इस वक्त आपस में झगड़ रहे हैं, उसमें अक्सर फ़िकी इश्यूज़ पे इख्तलाफ है। अल्लाह के नबी के हदीस के मुकाबले में जो कॉल लेकर चलते हैं उनका इख्तलाफ क्या इबादत की बातों में, जबकि आप देखिए कि हमारा दीन क्या है? अखलाक का दीन है, अद्दीन वल मामला। अगर मेरे आपसे मामलात नहीं अच्छे ना, तो मेरी रात की तहज्जुद मेरे मुंह पे मारी जाएगी क़यामत के दिन। जी, मैं गलत नहीं कह रही। अगर मैं आपके ख़िलाफ़ गीबत कर रही हूँ बैठी, तो मेरी ये थोड़ी सी जो नेकी इस दर्स के करने से आएगी, ये क़यामत के दिन सारी नेकियाँ जल जाएंगी, क्योंकि मैंने आपकी गीबतें कर ली। अखलाकी तौर पे हम बुरे होते हैं ना, तो इबादतें सारी ज़ाया हो जाती हैं। और आज हमारा हाल है कि नेकियाँ भी खूब करते हैं माशाल्लाह, नेकी भी कोई नहीं छोड़ते, लेकिन गुना भी हमसे होते हैं। تو اخلاق کی اقدار ایسے نیک قلب سلیم کے اندر اخلاق کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بڑا بے ضرر بندہ، یہ میری غیبت نہیں کرے گا، یہ میرے بارے میں برا نہیں ہوگا. پھر آگے دیکھیے، بری عادات اور اخلاقیات ایسے دور ہٹا دی جاتی ہیں جیسے بھٹی سونے اور چاندی کی ملاوٹ الگ کر دیتی ہے. یعنی قلب سلیم وہ ہے جو اخلاقی طور پہ بہت اسٹرانگ دل ہوتا ہے. اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے. اور قلب سلیم کا مالک انسان اللہ کی رحمت، خصوصی عنایت اور تحفظ اور توفیق میں گھرا ہوتا ہے. کس کس کا دل کر رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، میرے اوپر خصوصی عنایتیں ہوں، اللہ میرا تحفظ کر لے اور مجھے توفیق دے؟ تو بس پھر اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے. جتنا زیادہ آپ کے میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت ہوگی. ایک دوسرا دل ہے جس کو کہتے ہیں قلب مخبت. سورۃ حج آیت 34-35، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مخبت کو. مخبت کہتے ہیں عاجز، جیسے شمع موم بتی پگھلتی ہے نا تو جدھر موڑے مڑتی جاتی ہے. مخبت ایسا دل ہوتا ہے نرم کھلا ہوا. کیا کیفیت ان کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور مصیبت پر صبر کریں، نمازیں قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دی اس میں سے خرچ کریں. تو اخبات والے دل، جب آگ کی چنگاریاں بجھ جاتی ہیں نا تو آپ دیکھتے بیچ میں تھوڑی تھوڑی سلگتی رہتی ہیں، اس کیفیت کو اخبات کہتے ہیں. سلگنے والا دل، ہر وقت اس کے اندر ایک دکھ کی کیفیت ہے کہ میرا کیا بنے گا، مجھے کیا ملے گا، میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. پھر اسی طرح سے اسی کے اوپر سورہ ہود آیت 23 میں بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ان کے دل اپنے رب کے آگے گداز ہو گئے، نرم دل ہو گئے ان کے، یہی لوگ جنت میں جانے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چونکہ آج کا موضوع قلب سلیم ہے تو قلب سلیم کی کچھ اور کیفیات کو دیکھ لیجئے. سب سے افضل کیفیت اور سب سے بڑی کیفیت کیا ہے؟ کہ دل شرک سے پاک ہو، شرک اکبر ہے. پھر شرک اصغر سے پاک ہو، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا نہ ہو دل میں. کوئی نیکی کرے دل میں یہ نہ رکھے کہ دوسرے ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری بات، اس میں دل میں نفاق نہ ہو، کبیرہ گناہوں اور برائیوں سے وہ دور ہو، بد اخلاقی والی صفات نہ ہو، یعنی بخل، لالچ، حسد، کینہ، تکبر، ملاوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، مکر، جھوٹ، سب دلی بیماریوں سے وہ دل پاک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ انسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنائے اور کثرت سے اچھے کام کرے اور برے اعمال سے روکا رہے. یہ ہے قلب سلیم. جب آپ کا میرا دل اس طرح کا دل بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دل کو پاک کر دے گا دوسری چیزوں سے. تبھی تک جو نام ہم نے پڑھے، قلب سلیم ہے اور قلب مخبت ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کے میرے لیے جو چیز ہے قرآن سنت میں وہ کیا ہے، کہ آپ نے اپنے میرے دل کو کس لحاظ سے لے کر چلنا ہے. اگر آپ اس کو اس رنگ میں دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت اور آپ کے ساتھ جو معاملے آتے ہیں کہ اچھی باتوں کا خیال ہے، اپنے آپ سے پوچھئے کتنی باتیں میرے دل میں اچھی رہتی ہیں اور کتنی میرے دل میں بری رہتی ہیں. اگر اچھی باتیں دل میں ہیں تو خوش ہو جائیے، بری ہیں تو بری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دل جو تھے وہ دنیا کے بہترین انسانوں کے دل تھے. آج میں آپ بھی اس دنیا میں آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذرا سی ایک لسٹ تیار ہے آپ کے لیے، دیکھ لیجئے، کیونکہ میں نے اپنے لیے گول بنانا ہے. انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے، چاہے اس گھر میں رکھیں کہیں اور، جس میں ہم ان سب کی ڈیٹیلز پڑھیں گے. لیکن آج صرف ناموں پہ اکتفا کیجئے. قلب سلیم ہے دل جس میں خیر ہے، شر نہیں ہے، کفر نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، برے عمل نہیں ہے، اور یہ دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے دلوں میں سے ایک دل ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں قلب منیب کے نام پہ آتا ہے. سورۃ قاف آیت 33 میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کا دل قلب منیب ہو. منیب نام سنا ہوا ہے؟ رجوع کرنے والا، ابواب، وہ دل جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہے. اپنے آپ سے پوچھیے، دیکھیے غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، کیا اس کے بعد فوراً پلٹتی ہوں اللہ کی طرف؟ تو قلب منیب سورۃ قاف 33 میں، اور قلب مخبت سورۃ हज 54, झुका हुआ दिल, मुतमईन दिल, पुरसकून। अपने दिल को पूछिए, आज घर जाएंगे ना तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और पूछिएगा, मेरा दिल कैसा है? क्या मेरा दिल मुतमईन है, पुरसकून हो, बेचैन तो नहीं हो? फिर इसी तरह से देखिए, कल्ब कल्बुल वजिल, ये वो दिल है जो नेकी करने के बाद भी डरता है कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा, और अपने रब के अज़ाब से डरता है। सूरत मोमिनून में आयत 60 में अल्लाह ने कुछ लोगों का जिक्र किया है कि मुशफिकून, वो डरते रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, ये कौन लोग हैं जो चोरी करके, डाके डाल के, जिना करके डरते हैं? तो आपने फरमाया, उस सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, इससे मुराद गुनाहगार नहीं, इससे मुराद वो लोग हैं जो नेकी करके भी डरते हैं। चलिए अपने आप से पूछें, क्या मुझे अपनी नेकियों का मान नहीं है? तकब्बुर तो नहीं आ गया मेरे अंदर कि मैं तो बड़ी नेक हूँ? आप में नेकी करें और डरें, आपका दिल कल्बुल वजिल है। कैसे? समझिएगा, घर में दावत है, बहुत अजीज़ और बड़े काबिल एहतराम मेहमान आ रहे हैं, आप सुबह से शाम तक लगी हुई हैं किचन में, आखिर तक क्या दिल खुश हो जाता? डर किस चीज़ का होता है? बिरयानी ढीली ना हो जाए, कोरमा जल ना जाए, सब ठीक है, फिर भी आप बार बार कहते हैं आज सही नहीं पका। जब तक अगला आकर खा कर कबूल करके दुआ देकर ना चला जाए। कल्बे वजिल, मरते दम तक नेकियां कीजिए और अपनी नेकियों पे राज़ी ना हो, क्योंकि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल, दो बाप बेटे की मिसाल कुरान में है, इतनी बड़ी खिदमत अल्लाह ने उनसे ले ली, क्या भला। अपना घर बनवा लिए, इससे भी बड़ी कोई नेकी। देखिए, आज बैतुल्ला में शायद इस साल कई लाख का फिगर मैंने पढ़ा है, कहीं हर साल 10-20 लाख लोग हज करते हैं ना, उमरा तो सारा साल चलता है, किस किस को अजर जा रहा है उसका? मुझे आप में से कोई बता सकता है कि आपका जब वीज़ा लगता है और आप उमरा करने जाती हैं और आप हज पे जाती हैं, क्या एक बार आपको ख्याल आता है कि ये मेरा हज और उमरा अगर कबूल हो गया तो सबके साथ इसका अजर, इसका सदका जारिया इब्राहिम और इस्माइल को मिलेगा, जिसने नेकी का खैर का काम किया, जिसने नेकी की बुनियादों में हिस्सा डाल दिया, दुनिया से चले जाएंगे, आपका हिस्सा नहीं जाएगा। अपने लिए ये ख्वाहिश रखे, अल्लाह मुझे नेकी के काम में बुनियादों में डाल। देखिए, ये घर है, अल्लाह इसको सलामत रखे, इनको भी सलामत रखे, इनके घर को सलामत रखे। ये खिड़कियाँ चाहें तो चंद साल बाद बदल लें, कर सकते हैं ना, ये पेंट चेंज कर सकते हैं। इस घर की पूरी रेनोवेशन अगले 10 साल बाद ये कर लें, लेकिन नहीं बदलेंगे तो इसकी बुनियादें नहीं बदलेंगे। दुआ कीजिए, अल्लाह में किसी भी दीन के काम की बुनियादों में ले लें। और सहाबा कराम, इसीलिए सहाबा कराम है कि वो दीन इस्लाम की बुनियादों में बढ़ गए हैं। अब चाहे आप में जो मर्ज़ी करते रहे, हम सहाबा के दर्जे को नहीं पहुँच सकते। तो हमेशा ख्वाहिश करें कि अल्लाह जब दीन का काम शुरू हो ना, मेरा कहीं हिस्सा डाल दें, ताकि मैं चली जाऊँ तो लोगों ने ऊपर तो पता नहीं बाद में कितनी मीन मर्जियाँ करनी है, पर बुनियादें नहीं हटेंगी। ठीक है, फिर इसी तरह आप देखिए, एक और दिल है हमारे सामने, कल्बुन तकी, मुत्तकी दिल। सूरत हज आयत 32 में, वमई युअज़्ज़िम, और जो कोई ताज़ीम करे, रिस्पेक्ट करे, किसकी? शायरिल्लाह, अल्लाह के शायर की। फ़इन्नहु मिन तक़्वल क़ुलूब, अल्लाह के शायर की ताज़ीम करना। शायर क्या है? इंग्लिश में बोलूँगी तो फ़ौरन समझ जाएंगे। हमारा मसला यह कि हमारी उर्दू गड़बड़ है और इंग्लिश आसान है। मासियाँ भी कहती हैं, संडे को नहीं आऊँगी, मुझे लीव चाहिए। माशाल्लाह, आप उन्होंने सीख ली इंग्लिश तो हमें भी आ गई है। आप देखिए कि हम एक लफ्ज़ बोलते हैं रिचुअल, शायर रिचुअल्स होते हैं। खाना काबा रिचुअल है, मस्जिद, टोपी, निकाब, हिजाब। और आज मैं एक कॉल सुन रही थी, गालिबन इब्न कय्यम या किसी पुराने असलाफ में से किसी का था, वो कहते हैं कि शायर इल्ला में अगर इल्म वाला नहीं है तो फिर और कौन होगा? उलमाए कराम, दीन की खिदमत करने वाले। लफ्ज़ मौलवी की आज के बाद कभी गाली ना बनाए, आज लफ्ज़ मौलवी गाली है, लतीफ़े हैं, तो ये अल्लाह का शेर है। अजान की आवाज़ का मजाक ना उड़ाएं, हूरों का मजाक ना उड़ाएं, चार शादियों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये सब इस्लामिक रिचुअल्स हैं। ठीक है, तो कल्बे तकी होता है जो कभी सोच भी नहीं सकता कि दाढ़ी, मुसल्ले, टोपी का मजाक उड़ाएं।